स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के इस अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
फरियाद है मसीहा, जवाब दे मुझे। फरियाद है मसीहा, जवाब दे मुझे। मेरी खताएं बख्श कर,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं उन मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं और सुनने के पश्चात अपनी आशीषों को पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी इस कार्यक्रम को सुनने के बाद अपने जीवन में जो आशीषें प्राप्त करेंगे पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से हमसे अवश्य ही अपने विचारों को बांटेंगे, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के उन आशीषों के लिए उसे धन्यवाद दे सकें। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न के अर्थ को जानने के लिए उसने अपने हर एक ज्योतिषी और तंत्र विद्या जानने वालों को बुलाया ताकि उस स्वप्न का अर्थ जाने। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का दास दानियल इस स्वप्न का अर्थ बताता है। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इस पर विचार करें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में बड़ी दया के द्वारा दिया है, ताकि आज हम इस पृथ्वी पर जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम लोग अच्छे और भले लोग हैं, परंतु इसलिए कि आपका अनुग्रह हम पर है। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप बचा के रखें। उनके जीवन में आप अपने सत्यता को प्रकट करें, ताकि वे आपकी महानता को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में है, जो तनाव में है, परेशान और चिंताओं में है। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उनकी बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा दें, उनके जीवन की जरूरतों को आप पूरा करें और उनके हर एक प्रकार की परेशानियों को आप दूर करें। आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ें और देखें नबूकदनेस्सर अपने विशाल साम्राज्य के बारे में सोचते सोचते सो गया, तो उसने स्वप्न में एक विशाल प्रतिमा देखी, जिसके अलग अलग भाग अलग अलग धातुओं के थे। अब वह परेशान हो गया कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। उसने अपने राज्य के सब विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे उसके स्वप्न बताएं तथा उसका अर्थ भी बताएं। हम दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। यह तो दंड की अति है, परंतु दूसरी ओर यह भी देखिए कि राजा को क्या चाहिए। यहां अनुवाद कुछ इस प्रकार किया गया है कि राजा अपने स्वप्न को भूल गया है, परंतु सच तो यह है कि उसे अपना स्वप्न स्मरण है और वह यह भी जानता है कि उसका स्वप्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु वह अपना स्वप्न बताना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वह स्वप्न का सर्वथा उचित अर्थानुवाद जानना चाहता है। नबूकदनेस्सर कहता है कि वह अपना आदेश बदलेगा नहीं, मैं किसी भी कीमत पर अपना स्वप्न नहीं बताऊंगा, अतः मुझसे निवेदन न करें कि मैं अपना स्वप्न तुम्हें बताऊं। कुछ अंग्रेजी अनुवादों में हाशिया में यह टिप्पणी की गई है, एक टीका युक्त अंग्रेजी अनुवाद में इसका अर्थ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझे स्वप्न और उसका अनुवाद नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें चिरवा दूंगा और तुम्हारे घर नष्ट कर दूंगा। नबूकदनेस्सर उन्हें भयभीत कर रहा है, उन्हें अर्थ तो बताना ही है, परंतु साथ ही स्वप्न भी बताना है, जो कि एक कठिन काम है। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। दूसरी ओर वह कहता है कि स्वप्न और अर्थ बताने पर वह उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार देगा। मित्रों, हम देखेंगे कि नबूकदनेस्सर उदार एवं दयालु भी था। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। उसके ज्योतिषियों ने भयानक संकट को समझा, अतः उन्होंने फिर बल दिया कि उन्हें स्वप्न बताया जाए तो वे निश्चय ही उसका अर्थ बताएंगे। दानियल 2 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो। अब राजा कहता है कि मुझे काम की बात करना है और तुम किसी न किसी बहाने समय को बढ़ाना चाहते हो। एक अंग्रेजी अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, राजा ने कहा, मृत्यु दंड के भय से तुम लोग समय बढ़ाना चाहते हो। राजा के कहने का मूल अर्थ यही था। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी, जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। मेरे विचार में राजा यहां अपने ज्योतिषियों में अविश्वास प्रकट कर रहा है। शायद उन्होंने पहले कभी उसे निराश किया था, जैसे बाल के पुजारियों ने राजा आहाब को निराश किया था। राजा आहाब युद्ध में मारे जाने के कारण उन्हें दंड नहीं दे पाया था, परंतु नबूकदनेस्सर को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे उसे मूर्ख बना रहे हैं। अतः उसने अब उनकी परीक्षा ली। उसका कहना तर्कसंगत था, यदि वे उसका स्वप्न बता सकते तो निश्चय ही उनका अर्थ निर्धारण सही होगा। यदि वे उसका स्वप्न न बता पाए तो उनका अर्थ निर्धारण भी संदिग्ध होगा। हम देखते हैं कि ज्योतिषियों के चूकने पर उनको नष्ट करने का आदेश भी दिया जाएगा। दानियल 2 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, कस्तियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कस्ती से ऐसी बात पूछी हो। उनकी यह बात अति सत्य थी कि परमेश्वर के अपेक्षा अन्य कोई नहीं जो उसका स्वप्न बता पाए। वे हताश हो अपनी जान बचाने के लिए राजा को तर्कहीन कहना चाहते थे। यदि परमेश्वर को अलग कर दिया जाए तो निश्चय ही राजा का आदेश तर्क रहित ही था, परंतु जब वे अपनी बुद्धि का दावा करते थे तो राजा का कहना भी सही था कि वे अपनी बुद्धि का प्रमाण दें। हम आगे पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय उसके 11 पद में, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। उनका कहने का अर्थ था कि स्वर्ग से उनका संपर्क नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके देवता उन्हें समाधान नहीं सुझा रहे थे। अब दानियल के उभरने का मार्ग तैयार होता है, और दानियल 2 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। मेरे मित्रों, राजा अपने क्रोध के लिए जाना जाता था, और यहां वह प्रकट है। वह मानसिक विकार से ग्रस्त था, जो हम आगे चल करके देखेंगे। राजा आज्ञा देता है कि सब ज्योतिषी और सब पंडितों को तुरंत घात किया जाए। हम आगे पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय उसके 13 पद में, अतः यह आज्ञा निकली और पंडितों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। मेरे मित्रों, राजा की आज्ञा के अनुसार दानियल और उनके साथियों को भी घात किया जाना था, क्योंकि राजा को निराश करने वाले ज्योतिष भी उनको प्रशिक्षण देते थे। राजा की इस उग्र आज्ञा के कारण अनेक निर्दोष जन मारे जाएंगे। नबूकदनेस्सर की निरंकुश इच्छा की सीमा नहीं थी, वह जो चाहता कर सकता था। तब हम देखते हैं कि स्वप्न बताने की दानियल की इच्छा। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। राजा की इस अन्यायी और अविवेकी आज्ञा पर दानियल आश्चर्यचकित था, अतः वह बड़ी सूझबूझ के साथ अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक के पास गया। अर्योक पराया राजा की उपस्थिति में ही रहता था क्योंकि वह सुरक्षा कर्मियों का प्रधान था। हम नहीं जानते कि उसने दानियल से क्या कुछ कहा, परंतु यहाँ लिखा है कि उसने राजा की ऐसी उतावली का कारण दानियल को बताया। तब हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय उसके 16 पद में, तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। दानियल राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। दानियल राजा का अनुग्रह पात्र तो था ही, उसने राजा से समय लिए कि वह उसे स्वप्न और उसका अर्थ बताएगा। यह एक युवक की उतावली थी, परंतु हम शीघ्र देखेंगे कि यह एक विश्वासी का परमेश्वर पर भरोसा है। जी हाँ, दानियल 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरियाह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो, यह अभिव्यक्ति केवल बंधुआई के समय लिखी गई पुस्तकों में ही पाई जाती है। एज्रा, नहेमिया, दानियल। यरूशलेम के मंदिर से परमेश्वर की महिमा के प्रस्थान के बाद परमेश्वर को स्वर्ग का परमेश्वर कहा गया है। ये चारों युवक जानते थे कि परमेश्वर एक छोटे से भवन में नहीं रहता, वह वास्तव में स्वर्ग का परमेश्वर है। उन्हें परमेश्वर की दया की आवश्यकता थी, यही उनकी प्रार्थनाओं का आधार था। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले के सद्गुणों या चरित्र या कर्मों के आधार पर प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रार्थना पूर्ण रूपेण उसकी दया पर निर्भर है। आज हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपनी योग्यताओं पर निर्भर करके नहीं, उसकी योग्यता और उसकी दया पर निर्भर करके उसके पास आते हैं। दानियल स्वप्न सुनाता है, तो आइए हम पढ़ें दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 19 पद में, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। मेरे विचार में परमेश्वर ने दानियल को भी वही स्वप्न ज्यों का त्यों दिखाया था, अन्यथा वह कैसे जान पाता कि राजा ने किस प्रकार का स्वप्न देखा है। आगे हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय उसके 20 से 23 पद में, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है, तूने हमको राजा की बात बताई है। मेरे प्रियो, यह दानियल की उल्लेखित प्रार्थनाओं में से एक है। दानियल उद्देश्य गर्भित प्रार्थनाशील भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर ही ने दानियल पर यह भेद प्रकट किया था और वह परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। अब दानियल राजा के समक्ष खड़ा होने को तैयार है। आइए हम पढ़ें दानियल दूसरा अध्याय उसके 24 पद में। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। दानियल इस जनसंहार को रोकना चाहता था और अर्योक की मनोकामना भी यही थी कि ज्योतिषियों को घात न किया जाए। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय के 25 पद में लिखा है, तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। अर्योक तुरंत दानियल को राजा के पास ले जाता है और राजा को शुभ संदेश सुनाता है कि उसका स्वप्न बताने वाला कोई आया है। दानियल 2 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतससर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, यह स्पष्ट है और तर्क सम्मत भी है कि राजा संशयी था। उसके सब अनुयायी ज्योतिष न तो उसका स्वप्न बता पाए और न ही उसका अर्थ बता पाए। तो यह एक नवदीक्षित युवक दानियल कैसे अपने आप को इस योग्य बता सकता है? राजा ने उससे कहा, तेरे कहने का अर्थ क्या है? क्या मेरे यह सब अनुभवी ज्योतिष जो मेरा स्वप्न बताने में असमर्थ हैं, उनसे बढ़कर तू है जो मेरा स्वप्न और उसका अर्थ बताएगा? मित्रों, यह प्रश्न उपहासजनक है, परंतु दानियल के पास इसका अद्भुत उत्तर है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि दानियल परमेश्वर पर भरोसा रखता था और इतना ही नहीं, वह उसके सम्मुख अपनी हर एक समस्या को रखता था और उससे प्रार्थना के माध्यम से मांगता था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि वह अपने अन्य मित्रों के साथ हनन्याह, मिशाएल और उसके अन्य मित्र मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें उस स्वप्न का अर्थ बताया जाए जिसे राजा ने देखा है। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दासों की प्रार्थना को सुना और इस स्वप्न को दानियल पर प्रकट किया ताकि दानियल राजा के उस स्वप्न का अर्थ बता सके। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं, विश्वास योग्यता के साथ आते हैं, तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और इतना ही नहीं, वह उसका उत्तर भी देता है, उसका उपाय भी देता है। कई बार जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने विश्वासी जीवन में झांक करके देखें कि क्या आज मैं सचमुच में परमेश्वर की निकटता में बड़े विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना में आती हूं या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है ताकि हम दानियल और उसके मित्रों के समान परमेश्वर के पास आ सकें। आज हम सबके लिए एक महायाजक है, प्रभु यीशु, जो हमारी प्रार्थनाओं को पिता तक पहुंचाता है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं और अपने जीवन के उन बातों को जो अनुचित हैं दूर करें ताकि परमेश्वर का वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्यरत हो सके। कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है और हम निराश हो जाते हैं, परंतु इस बात को हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन से, हमसे बात करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। वह चाहता है कि हम स्पष्ट मन से उसके पास आएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आपने अवश्य ही इस बात को जान लिया है कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और जब हम उसके पास आते हैं तो वह हमारी सहायता करता है। अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि दानियल राजा के स्वप्न के अर्थ को बताता है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने जीवन को परमेश्वर के निकटता में बनाए रखें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी। लंबा है सफर अपना, बढ़ते ही जाना है, है ताज रखा फिर उस ताज को पाना है, उस ताज को पाना है, अब कस लो कमर अपनी, शैतान से लड़ाई है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी। दुनिया ये नहीं अपनी, सब कुछ बेगाना है, कुछ रोज यहाँ रहना, फिर छोड़ के जाना है, फिर छोड़ के जाना है। रह बर वो